सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं साहुवज्रायिरे अरहन्ते वन्दिऊणसिद्धेवि जे पञ्चलोकवाले वोच्छं बन्धस्य सामित्तम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। आठवीं पुस्तक जो तृतीय खंड है, बंध स्वामित्व विचय, उसमें हम पृष्ठ संख्या 74 पर आ गए, 74। अब हमने देखा था ये तीर्थंकर नाम कर्म के बंधक कौन है और अबंधक कौन है, इसकी चर्चा कल से शुरू है। 73 पृष्ठ पर हमने देखा था कि असंयत समय दृष्टि से लेकर यानी चौथे गुणस्थान से लेकर आठवें गुणस्थान के उपशमक और क्षपक तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले जीव पाए जाते हैं, और उसमें भी वो विच्छित्ति कहाँ पर होती, तो संख्यात बहुभाग बीत जाने पर। जैसे हमने पहले देखे थे 7 में से 6 बहुभाग बीत जाने पर वहाँ ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी रुक जाता है। हमने अन्य भी 27 प्रकृतियाँ देखी थी और उसके साथ आहार द्विक देखा, और अब यहाँ तीर्थंकर प्रकृति इन तीस प्रकृतियों की बंध की विच्छित्ति आठवें के छठे भाग में होती है। पहले अंत में जब छठे भाग में कहेंगे तो अंतिम समय में, यानी अंतिम समय तक बनती है, बाद में नहीं बनती, सातवें भाग में नहीं बनती। ये हमने कल सूत्र देखा था, अब यहाँ हम 74 पृष्ठ पर आए हैं। उसमें अन्य अन्य प्रश्नों के उत्तर भी देखे थे हमने, वो देवगति संयुक्त बनता है आदि आदि बातें हमने देखी थी। अब शंकाकार पूछता है, तिर्यक गति में तीर्थंकर कर्म के बंध का प्रारंभ करने वाले भले न हो, क्या कहते हैं? तीर्थंकर प्रकृति जो जीव बांधता है, वो बांधने की शुरुआत, उसका प्रारंभ मनुष्य गति वाले और वे भी कर्म भूमि वाले ही करते हैं। भोग भूमि वालों में तीर्थंकर प्रकृति होगी कि नहीं, कोई बांधने वाले जी? हाँ, मनुष्यों की बात है, कोई यहाँ बांध के वो मरकर वहां जावे तो? अरविंद भाई नहीं कहते नहीं नहीं तो एक भाव बढ़ जाएगा ना उनका। जिसने मनुष्यायु तीर्यंचायु का बंध किया है, ऐसे जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही नहीं होगा। हमने देखा था उस बंध के बाद क्षायिक सम्यक तो कोई प्राप्त कर सकता है, परंतु तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसको नहीं होगा। नरकायु बांधी है उसको हो सकता है, क्योंकि नरक में से इमीडिएटली निकलकर वो उसी भव में तीर्थंकर होगा। तो ये तीर्यंच गति के साथ विरोध है। देखिए क्या कहते हैं शंकाकार की शंका क्या है, भले तीर्यंच गति में प्रारंभ नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा रूल है तीर्थंकर प्रकृति बांधने के लिए जो शुरुआत करता है वो देव नहीं हो सकता, नारके नहीं हो सकता, तिरंच नहीं हो सकता, भोग भूमि का मनुष्य भी नहीं हो सकता, तो कर्म भूमि के मनुष्य ही वो बांधने की प्रारंभ करते हैं, वो भी तीर्थंकर के यानी केवली के शुद्ध केवली के पादमूल में, केवली के या तीर्थंकर के पादमूल में ऐसा नियम है उसका। इतनी जो विशुद्धि होती है वो उनके सान्निध्य में बनती है, ये निमित्त का कथन है, नहीं तो सबको ही हो जावे ना तीर्थंकर के पादमूल में जो जो आए हैं उनको। तो शंकाकार क्या पूछ रहे हैं अभी कि तीर्यंच गति में उसका प्रारंभ भले न हो, क्योंकि वहाँ जिनों का अभाव है, जिनों का यानी वहाँ तीर्थंकर या अन्य केवली वहाँ पाए नहीं जाते भोग भूमि में। और हमने देखा था एक नियम अभी अभी हमने सुना कि तीर्थंकरों के या केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो यहाँ प्रश्न करता है कि भोग भूमि में क्यों नहीं बंध होता, क्योंकि वहाँ जिन भगवान है ही नहीं है। किंतु जिन्होंने पूर्व में ओम का मैं करना पूर्व में तिर्यगायु को बांध लिया है, उनके पीछे सम्यक्वादी गुणों के प्राप्त हो जाने से तीर्थंकर कर्म को बांध कर पुनः तिर्यंचो में उत्पन्न होने पर तीर्थंकर के बंध का स्वामीपना पाया जाता है, ये उसका प्रश्न है। प्रश्न पहले समझ में आया कि जैसे हम क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, क्षायिक सम्यक दर्शन का प्रारंभ कर्मभूमि के मनुष्य में ही होता है, फिर भी क्षायिक सम्यक प्राप्त करके जो तिर्यंच में गया है कैसे जाएगा, तो उसने सम्यक्त्व से पूर्व तिर्यंचायु बांधी है। तो वैसे जहाँ होता है क्षायिक के साथ वहाँ जाता है, वैसे इसमें क्या यानी क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या है नहीं, वो क्यों नहीं जाता वैसा मनुष्य में प्रारंभ करे, और जिसने पहले ही तिर्यगायु बांध ली है बाद में सम्यक तो प्राप्त किया है बाद में तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, तो ऐसा जो वहाँ क्यों नहीं जाता, ऐसा उसका सवाल है। उसका समाधान इसके उत्तर में कहते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पूर्व में तिर्यंच वो य के ऊपर र करना तिर्यंच वो मनुष्य आयु दोनों के लिए दोनों को साथ में लिया, जिसने मनुष्य आयु का बंध किया है या जिसने तिर्यंच आयु का बंध किया है, उन जीवों के बांधी गई नरक व देव आयुओं के समान तीर्थंकर कर्म के बंध का अभाव है। यानी इस वाक्य का अर्थ ऐसा है जिसने पहले नरकायु बांधी हो या देवायु बांधी हो ऐसे जीव को तो तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है, परंतु जिसने ऑलरेडी मिथ्यात्व दशा में ही तिर्यंचायु या मनुष्यायु बांध ली हो तो ऐसे जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही नहीं होगा। शंका, वह भी कैसे संभव है, ये भी अभी ये देवायु बांधी नरकायु ये कैसे संभव है, तो कहते हैं क्योंकि जिस भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया गया है उससे तृतीय भव में यानी उसको पकड़कर, यानी जैसे श्रेणिक राजा के संबंध में श्रेणिक राजा के भव में तीर्थंकर प्रकृति बांधना प्रारंभ किया वो उसका पहला भव, नारकी का दूसरा, और फिर यहाँ तीर्थंकर हो गए महापद्म है ना तो वो तीसरा भव। तो जिस भव में तीर्थंकर प्रकृति बांधना शुरू किया है उसको पकड़ के तीसरा भव, तो उससे तृतीय भव में तीर्थंकर प्रकृति के सत्वयुक्त जीवों के सत्व यानी जिसके तीर्थंकर प्रकृति का सत्ता में पड़े है जिसने बांधी ऑलरेडी ऐसे जीव के मोक्ष जाने का नियम है। अब हमने जैसे देखा था क्षायिक समय दर्शन होकर भोग भूमि में जाता है उसका एक भव बढ़ता है ना, क्योंकि वो बीच वाला भोग भूमि का करेगा फिर स्वर्ग में जाएगा और फिर वहां से मनुष्य होकर फिर मोक्ष जाएगा, वहां भी ज्यादा भव नहीं लेता क्षायिक वाला, जो क्षायिक समय दर्शन प्राप्त करता है या तो उसी भव में मोक्ष जाएगा कोई, या देव का या नरक का भोग करके या तिर्यंच का या मनुष्य का करके, तिर्यंच मनुष्य का करेगा तो एक भोग भूमि का भोग बढ़ गया है, देव और नरक का करेगा तो डायरेक्ट यहाँ जन्म लेकर मोक्ष चला जाएगा। क्षायिक की बात है, हाँ क्षायिक में चौथा हो सकता है भोग भूमि का बीच में आया तो, अन्यथा उसके लिए भी यही रूल है क्षायिक होने के पश्चात तीसरे भव में तो मोक्ष जाएगा ही, उसके और भव नहीं होंगे, या कोई उसी भव में क्षायिक प्राप्त करके उसी भव में मोक्ष चला जाएगा। जैसे हमने देखा था निगोद से भी कोई निकलकर उसी भव में मोक्ष भी जा सकता है मनुष्य होकर, तो वहां तो वो वहां से आएगा समय तो प्राप्त करेगा क्षायिक होगा सब कुछ उसी एक भव में करेगा वो, तो वैसे तो पॉसिबल है। यहाँ तीर्थंकर प्रकृति की बात चल रही है देखो, परंतु तिर्यंच और मनुष्यों में उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यक दृष्टि मनुष्य सम्यक दृष्टियों की देवों में उत्पन्न न होकर देव और नारकियों में उत्पन्न हुए जीवों के समान मनुष्यों में उत्पत्ति नहीं होती। क्या कहना चाहते हैं कि जैसे भूभूमि वाले जो तिरंच और मनुष्य है वो नियम से देवों में जाते हैं, यदि ऐसा होता कि वहां के सम्यक दृष्टि मनुष्य हो जावे, जैसे मनुष्य मरकर देव या नारकी होता है तो नियम से अगले भव में, अभी सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, अगले भव में तो फिर दोबारा मनुष्य ही होगा। वैसे कोई सम्यक दृष्टि तिरंच और मनुष्य है, हमने देखा है ना, तिरंच आयु या मनुष्य आयु बांधी है, सम्यक तो प्राप्त किया है, तो भोग भूमि का सम्यक दृष्टि तिरंच या मनुष्य होगा वो, या तिरंच जो आयु बांधी है, और वहां से मरकर वो नियम से स्वधर्म ईशान में चला जाएगा, सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि वहां का मरकर मनुष्य में आए ऐसा बन नहीं सकता। ऐसी व्यवस्था होती तो वो तीसरे भोग का नियम लग जाता, हाँ उसके तो चार भोग करने ही पड़ते हैं। देखो ये वाक्य फिर पढ़ती हूँ तीसरी लाइन से, परंतु तिरंच और मनुष्यों में उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यक दृष्टियों की, मैंने जो मनुष्य सम्यक दृष्टि मरकर भोगभूमि का तिरंच या मनुष्य हुआ है जैसी आयु बांधी थी वैसा, उनकी देवों में उत्पन्न न होकर देव नारकियों में उत्पन्न हुए जीवों के समान मनुष्यों में उत्पत्ति नहीं होती। इधर वाक्य का ऐसा अपनी भाषा में रेगुलर नहीं है, उसका अर्थ इतना ही है जो सम्यक दृष्टि मनुष्य मरकर तिरंच या मनुष्य होता है जैसी आयु बांधी थी वो मरकर देवगति में ही उत्पन्न होगा, और देव और नरक गति में जाने वाले जीव सम्यक दृष्टि जो है वो यहाँ आकर फिर मनुष्य ही हो गए। जिससे कि तिरंच व मनुष्य में उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यक दृष्टियों की तृतीय भव में मुक्ति हो सके। यदि भूभूमि वाले मनुष्य तिरंच मरकर मनुष्य होते तो तृतीय भव में मुक्ति हो सकती थी, परंतु उनके लिए चौथे भव में मुक्ति का नियम है शायक हो तो। इस कारण तीन गतियों के असंयत सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति के बंधक के स्वामी है। प्रारंभ करने वाले नहीं कहा, बांधने वाले जीव कौन है, जहां प्रारंभ किया वो मनुष्य गति के जीव है, और फिर मरकर कोई देव में गया कोई नरक में गया तो देव गति के भी बांधने वाले, क्योंकि वहां जाने पर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, और नारकियों के भी जो पहले से बंध रहा है उसका वहां भी चलेगा, और फिर वहां से आकर मनुष्य में आएंगे तो वहां भी बंध चलेगा, यह बात सिद्ध होती है। अब इसी का विशेषार्थ करके समझाते हैं। यहां शंकाकार का कहना है कि जिस जीव ने पूर्व में तिर्यकायु और मनुष्यायु को बांध लिया है वह यदि पश्चात सम्यक्त्वादी गुणों को प्राप्त कर, पश्चात क्यों लिखा, पहले सम्यक तो होता तो बांधने में क्या हर्जा, अच्छा तो देवायु भी बांधेगा, मनुष्य तिरंच सम्यक दृष्टि के लिए यह नियम है कि वो देवगति देवायु को ही बांधते हैं, इसलिए पहले मनुष्यायु या तिरंच आयु बांधी बाद में सम्यक तो उत्पन्न किया फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ करे, ये शंकाकार की शंका है। पहले तिरंच आयु मनुष्य आयु बांधी बाद में सम्यक तो प्राप्त किया और फिर तीर्थंकर प्रकृति बांधी और पश्चात मरण को प्राप्त होकर तिरंच और मनुष्यों में उत्पन्न हो तो वह तीर्थंकर प्रकृति के बंध का स्वामी क्यों नहीं हो सकता, ये उसकी शंकाकार की शंका थी। इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि यह संभव नहीं है, कारण कि तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के चाहिए न के ऊपर मात्रा देना, बांधने के भव से तृतीय भव में मोक्ष जाने का नियम है। ये इतना स्पष्ट लिखा बांधने के भव को पकड़ के, नहीं तो उसके बाद भी हम तीन गिना सकते थे ना, परंतु यह बात उक्त जीवों में नहीं बन सकती, क्योंकि तिर्यकायु और मनुष्यायु को बांधने वाला जीव द्वितीय भव में तिर्यंच और मनुष्य होकर सम्यक दृष्टि होने से तृतीय भव में देव ही होगा मनुष्य नहीं, यानी उसका तो तृतीय भव देव में चला जाएगा, फिर वहां से तो कोई मोक्ष ही नहीं, अतः वह कोई भी दूसरे भोग का तिर्यंच और मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति के बंध का स्वामी नहीं हो सकता। अब ये सादी अनादि ध्रुव की बात चलेगी। तीर्थंकर प्रकृति का सादिक व अध्रुव बंध होता है क्योंकि उसके बंध कारणों के सादी शांतता देखी जाती है। उसके बंध के जो कारण है वो सादी है और शांत है। पर्यवसान भी शब्द आया था ना, सपर्यवसान उस दिन शब्द आया था। अब उसके प्रत्यय कौन से है उसकी चर्चा करेंगे। तीर्थंकर कर्म के प्रत्ययों के निरूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। देखो सादी क्यों कहा, क्योंकि ये तो अनादि बंध है ही नहीं है। जैसे ज्ञानावरण कर्म का बंध अनादि से पाया जाता है वैसे तो इसमें है नहीं, और ये भी मिथ्यात्व सासाधन या तीसरे गुणस्थान वाले इसके स्वामी नहीं है, चौथे से प्रारंभ हो सकता है। अब इसके बंध के कारणों की चर्चा करेंगे। कदी कारण ही जीवा तीर्थयरणाम गोदम कम्मम बंधंती। कितने कारणों से जीव तीर्थंकर वो थ के ऊपर देना र, तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म को बांधते हैं। शंका, नाम कर्म के अवयवभूत तीर्थंकर कर्म की गोत्र संज्ञा कैसे संभव है। ये प्रवचन में आते ना गुरुदेव के, तीर्थंकर गोत्र बांधा, ऐसे हमने सुना है बहुत बार। वो तो गोत्र कर्म है, गोत्र कर्म के तो उच्च और नीच ऐसे दो भेद है, इसीलिए शंकाकार ने शंका पूछ ली है। यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि उच्च गोत्र के बंध का अविनाभावी होने से तीर्थंकर कर्म को भी गोत्रत्व सिद्ध है। उसके साथ तो उच्च गोत्र ही बंधेगा, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला, क्योंकि महान पुण्य के फलस्वरूप इसका बंध हो रहा है। तो जब ये तीर्थंकर नाम कर्म बांध रहा है तो उसके साथ वो उच्च गोत्र ही है, उसके लिए उसको भी गोत्रत्व है, गोत्रपना सिद्ध है। शंका, शेष कर्मों के प्रत्ययों को न कहकर केवल तीर्थंकर नाम कर्म की ही प्रत्यय प्ररूपणा क्यों की जाती है। अन्य कर्मों में प्रत्ययों की चर्चा नहीं की, वो तो गुणस्थानों के प्रत्यय है, वो इसके है, ऐसा कह दिया। तो यहाँ तीर्थंकर प्रकृति के संबंध में प्रत्यय अलग से क्यों बता रहे हैं, ऐसा प्रश्न है। उसका समाधान, 16 कर्म मिथ्यात्व निमित्तक है क्योंकि मिथ्यात्व के उदय के बिना इनके बंध का अभाव है। अभी जो हमने मिथ्यात्व गुणस्थान में 16 प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति देखी थी उन 16 की बात है, वो तो मिथ्यात्व से ही बनते हैं। याद है ना कौन कौन से मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुसक वेद, असंप्राप्त सुरपाटिका सहनन, एकेन्द्रिय स्थावर आतप, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, बेइंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय, नरगति नरगत्यानुपूर्वी और नरकायु। ये 16 प्रकृतियों का बंध का कारण तो मिथ्यात्व है, उसके बिना वो नहीं बनती है। 25 कर्म अनंतानुबंधी निमित्तक है क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय के उदय के बिना उनका बंध नहीं पाया जाता। ये 25 कौन से है, अनंतानुबंधी चार, हाँ अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, फिर स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, जग्रोध परिमंडल स्वाति कुब्जक वामन, ये तो संस्थान हुए, वज्र नाराज नाराज अर्धनाराज कीलित ये सहनन हुए, तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु और नीच गोत नहीं उद्योत, यहाँ पर उद्योत लिया मैंने, दुर्भग दुस्वर अनादेय स्त्रीवेद नीच गोत्र और अप्रशस्त विहाय गति। ये 25 प्रकृतियाँ अनंतानुबंधी संबंधी है। 10 कर्म असंयम निमित्तक है क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण के उदय के बिना उनका बंध नहीं होता। ये 10 कर्म कौन से, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, ये चौथे गुणस्थान में जिसकी बंध विच्छित्ति होती है। हाँ औदारिक औदारिक अंगोपांग, वज्र वृषभ नाराज सहनन, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूरी और मनुष्यायु, ये 10 कर्म अप्रत्याख्यानावरण के निमित्त से। प्रत्याख्यानावरण चतुष्क अपने ही सामान्य उदय निमित्तक है, यानी पांचवें गुणस्थान में बंद विचित्ति प्रत्याख्यानावरण के चार की होती है, क्योंकि उसके बिना प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का बंध नहीं पाया जाता। छह कर्म प्रमाद निमित्तक है, क्योंकि प्रमाद के बिना उनका बंध नहीं पाया जाता। ये कौन से छह है? हाँ, अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनीय, अयशस्वी कीर्ति, अरति और शोक। देवायु मध्यम विशुद्धि निमित्तक है, क्योंकि अप्रमत्त काल का संख्यात्वा भाग बीत जाने पर अतिशय विशुद्धि के स्थान को न पाकर मध्यम विशुद्धि स्थान में ही देवायु का बंध विच्छेद देखा जाता है। यानी जब सातवें गुणस्थान में अधिक विशुद्धि वाले स्थान को छोड़कर मध्यम विशुद्धि तक ही इसका बंध पाया जाता है। आहारक द्विक विशिष्ट राग से संयुक्त संयम के निमित्त से बनता है। यानी राग से बनता है इतना नहीं कहा, ये भी बात कल परसों आई थी आहारक द्विक के, इसमें हमने देखा था। देखो इसमें राग वाले और संयम से बनता है, ऐसा लिखा। देखो पेज नंबर 72 में, ये उसमें समाधान में लिखा है ना नीचे कि कौन से प्रत्यय से आहारक द्विक का बंध होता है, तो यहाँ लिखा देखो, तीर्थंकर, आचार्य, बहुश्रुत अर्थात उपाध्याय और प्रवचन, इनमें अनुराग करना आहारक द्विक का कारण है। ये तो यहाँ बताया, यानी अनुराग, इनमें अनुराग ये बंध का कारण है। तो अनुराग तो चौथे पांचवे वाले को भी होगा, तो यहाँ 73 पृष्ठ पर लिखा है, देखो दूसरे पैराग्राफ में। दूसरी लाइन, दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन, इनके बंध के मनुष्य ही स्वामी है, क्योंकि अन्यत्र तीर्थंकर, आचार्य और बहुश्रुत विषयक राग संयम सहित पाया नहीं जाता। ये बहुश्रुत में दोनों को लेना, प्रवचन को भी और उपाध्याय को भी, इसलिए तीर्थंकर, आचार्य और बहुश्रुत ऐसा लिया। यानी उन संबंधी संयम वाले जीवों को रोज राग है, वहां आहारक द्विक का बंध होता है, और वो भी प्रमाद वाले जीव लिया। राग की मुख्यता है ना, अप्रमत्त में तो अबुद्धिपूर्वक में चला जाता है, राग की तीव्रता नहीं है वहां पर। अब यहां जो बात बता रहे हैं, अलग अलग प्रकृतियों के बंध के कारणों की हम यहाँ चर्चा करें ना, आहारक द्विक विशिष्ट राग से संयुक्त। विशिष्ट राग यानी अभी हमने देखा था वो तीर्थंकर, आचार्य और बहुश्रुत, इन संबंधी राग से संयुक्त है, क्योंकि ऐसे संयम के बिना उसका बंध नहीं पाया जाता। परभव निबंधक 27 कर्म, यानी परभव संबंधी 27 कर्म एवं हास्य रति भय जुगुप्सा पुरुष वेद और चार संज्वलन कषाय, ये सब कर्म कषाय विशेष के निमित्त से बंधने वाले हैं, क्योंकि इसके बिना उनके बंध स्थानों में बंध विच्छेद की उपपत्ति नहीं बनती। यानी जहां पर बंध होता है उनमें विशिष्ट कषायों के निमित्त से इनका बंध होता है, और उसके ऊपर वो कषाय नहीं पाए जाएंगे तो उसकी विच्छित्ति वहां नहीं पाई जाएगी। तो इनकी विच्छित्ति वहीं पर होती है जहां वो कषाय भी नहीं रहते, वहां उनका बंध भी मिट जाता है। सोलह कर्म कषाय सामान्य के निमित्त से बंधने वाले हैं, क्योंकि अणुमात्र कषाय के भी होने पर उनका बंध पाया जाता है। इसका अर्थ कोई कह सकेगा? हाँ देखो, ये 16 कर्म किसकी बात है? कषाय सामान्य से, अणुमात्र भी कषाय कहाँ पर है? 10वें गुणस्थान में। तो अणुमात्र भी कषाय होने पर जिनका बंध होता है वो ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 4, अंतराय के 5, और कौन रह गए? हाँ, उच्च गोत्र और यश कीर्ति, ये 16 प्रकृति, यानी 10वें गुणस्थान में बंध विच्छित्ति होने वाले। साता वेदनीय योग निमित्तक है, क्योंकि सूक्ष्म योग में भी उसका बंध पाया जाता है। योग में करना, ये अलग अलग निमित्त बता रहे हैं यहाँ। हमने देखा ना ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें में कषाय नहीं है, फिर भी साता वेदनीय वहां पाया जाता है बंध उसका। इस प्रकार चूंकि सब कर्मों के प्रत्यय युक्ति बल से जाने जाते हैं, अतः उनका यहाँ कथन नहीं किया। किंतु इस तीर्थंकर नाम कर्म का बंध प्रत्यय नहीं जाना जाता, उसके प्रत्यय ऐसे ही जाने नहीं जाते हैं गुणस्थान के अकॉर्डिंगली, कारण कि यह मिथ्यात्व निमित्तक बंधता नहीं। एक बात, क्योंकि जो मिथ्यात्व दृष्टि है, सासाधन वाला है, तीसरे गुणस्थान वाला है, इनके तो इनका बंध ही नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व के होने पर उसका बंध नहीं पाया जाता। देखिए एक ऐसा रूल है ना, हमने देखा था, जिसने पहले नरकायु बांध दिए, बाद में सम्यक दृष्टि हुआ, क्षायिक नहीं हुआ, हा? सम्यक दृष्टि हुआ और वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहा है। अभी नरकायु लंबी होगी, कोई दूसरे तीसरे नरक में जाने योग्य परिणाम होंगे, या पहले में भी जाने योग्य हो, कितनी भी नरकायु क्यों न बांधी हो, पर यदि वो क्षायिक नहीं होता है तो क्या होता है, उस मनुष्यायु के अंत में वो मिथ्यात्व में चला जाता है, क्योंकि हमने नरक में जाने वाले सम्यक दृष्टि के लिए कंडीशन देखी थी, वो क्षायिक होना चाहिए या कृतकृत्य वेदक। अब जिसने तीर्थंकर बनने प्रारंभ किया है परंतु जो क्षायिक नहीं है, वो तो नरक जाने, वो तो जा नहीं सकता, डायरेक्ट सम्यक्त्व के साथ नहीं जा सकता है, तो क्या होता है, आयु के अंत में वो मिथ्यात्व गुणस्थान में आता है, बिल्कुल छोटे अंतर्मूर्त के लिए। तो मिथ्यात्व में है तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है उसके। अब नरक में जन्म लिया तो वहां तो पर्याप्ति पूरी होते हुई उसके फिर वेदक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है वहां, और फिर वहां तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाता है। नहीं होगा यहाँ मनुष्य में, वो उसको दोनों को गिनकर भी एक अंतर्मूर्ति होगा, परंतु मनुष्यायु के अंत में, और वहां तो इतनी बात बताई शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक ही वो, उसके बाद में इमीडिएट वो वेदक समय तो प्राप्त करते। हाँ अभी देखेंगे यहाँ कुछ अधिक विशेषता कहते हैं, इससे पहले पढ़ा था मैंने कहीं, इसलिए कहते कि वो मिथ्यात्व निमित्तक बंध नहीं, वो मिथ्यात्व में गया ना अंतम अंतर्मूर्त में, तो मिथ्यात्व में गया तो वो एक उतने काल में उसका तीर्थंकर प्रकृति का बंध वहां उस अवस्था में नहीं होगा, फिर सम्यक तो प्राप्त करेगा तो फिर उसका बंध होगा। असंयम निमित्तक भी नहीं बनता, क्योंकि संयतों में भी उसका बंध देखा जाता है, यानी असंयतपना उसके बंध का कारण नहीं है, क्योंकि असंयत भी उसका बंध कर सकते हैं, संयत भी कर सकते हैं। कषाय सामान्य निमित्तक भी वह नहीं बनता, क्योंकि कषाय के होने पर भी उसका बंध विच्छेद देखा जाता है, जैसे कहते कषाय है बस, कोई भी कषाय क्यों ना हो उसका बंध होता होगा, नहीं होता। जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण हमने देखा था, दसवें गुणस्थान में भी बनते हैं, परंतु ये तो कषाय है अभी आठवें में, तभी उसकी बंध की विच्छित्ति हो जाती है, यानी कषाय है इसलिए बंध है ऐसा भी नहीं है। इसके स्पेशल प्रत्यय क्यों कहा, क्यों कहे, इसका ये समाधान चल रहा है। अन्य प्रकृतियों में तो अलग अलग, कोई प्रकृति मिथ्यात्व के निमित्त से बनती है, कोई असंयत से वगैरह, जो बातें हैं सबको रूल आउट करने के लिए ये बात बता रहे हैं। अथवा कषाय के होने पर भी उसके बंध का प्रारंभ नहीं होता, बंध का जो प्रारंभ हुआ है उसका, तो कषाय है इसलिए नहीं होता, कषाय नहीं है इसलिए होता, ये बात नहीं है वहां पर, ऐसा कोई उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। कषाय मंदता निमित्तक भी इसका बंध नहीं होता, क्योंकि तीव्र कषाय वाले नारकियों के भी उसका बंध देखा जाता है यानी बहुत मंद परिणाम है इसलिए उसको भी ये बंध हो रहा है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि नारकियों में तो तीव्र कषाय है फिर भी इसका भी बंध भी वहां चल रहा है। तीव्र कषाय भी इसके बंध का कारण नहीं है, क्योंकि मंद कषाय वाले सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देवों और अपूर्व करण गुणस्थानवर्ती जीवों में भी उसका बंध देखा जाता है। मंद कषाय यानी जिसको हम कहेंगे शुक्ल लेशा वाले जीव, तो उसमें तो बंध वो उसका कारण है कि नहीं है। पहले हमने देखा नारकियों को भी बनता है, तो तीव्र कषाय में बनता होगा, अति तीव्र अनुराग होगा, तो ऐसा नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि विमान वालों में तो बहुत मंद अनुराग वाले जीव है, वहाँ भी बनते हैं। आठवें गुणस्थान वाले कैसा राग होगा, वहाँ तो अत्यंत मंद है, वहाँ भी बंध है। सम्यक तो भी उसके बंध का कारण नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टियों में भी तीर्थंकर कर्म का बंध नहीं पाया जाता। ये यदि सम्यक तो उसके बंध का कारण माना जाए तो सभी सम्यक दृष्टियों को बंध होना चाहिए। जैसे मिथ्यात्व के कारण 16 प्रकृति बनती है, तो सभी मिथ्या दृष्टियों में उसका बंध पाया जाता है, वैसे यहाँ नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ क्या कहना चाहते हैं, किसी ने कहा ये मंद कषाय से बनते होंगे, तीव्र कषाय से नहीं होते, तो कहते नार की तीव्र कषाय वाले उनको भी बंध होता है। फिर किसी ने कहा हाँ तो फिर तीव्र कषाय से बनते होंगे, नहीं वो सर्वार्थ सिद्धि वाले जिनके मंद कषाय उनका भी बनता है, यानी कषाय के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं बिठा सकते, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। हाँ, डायरेक्ट नहीं, जो मनुष्य यहाँ संयमी मरकर, जो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव यहाँ से मरकर सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुआ, तो वहाँ उसका तीर्थंकर प्रकृति का बंध चलेगा, अन्य भूमि में भी उसका बंध चलता रहता है। प्रारंभ यहाँ होता है मनुष्य में, हाँ वहाँ जाके नए प्रारंभ होता नहीं, देवों में। हाँ बहुत सारे हैं ना, कल हमने किसकी कुंतुनाथ की देखी थी, किसकी कल परसों किसका कल्याणक हुआ, वो सर्वार्थ सिद्धि में से कितने ही तीर्थंकर आए हैं अपने। ये मल्लिनाथ तो अपराजित से आए थे, सर्वार्थ सिद्धि कल ही पढ़ा था किसी, देखेंगे। अब कहते अंतिम दो लाइन के अंत में, केवल दर्शन विशुद्धता भी उसका कारण नहीं है। क्या कहते हैं, दर्शन विशुद्धि यानी सम्यक्त्व संबंधी जो अधिक विशुद्धि है, दर्शन विशुद्धि। ये दर्शन प्रतिमा या दर्शन विशुद्धि का अर्थ क्या करते हैं लोग, रोज देव भगवान का दर्शन करना, ये दर्शन प्रतिमा लेने वाले कहते ना, वो दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन। दर्शन विशुद्धि यानी सम्यक दर्शन की विशिष्ट विशुद्धि, तो वो भी उसका कारण है। हमने तो 16 कारण में पहले दर्शन विशुद्धि भावना भाए ऐसा देखा था, तो वो अकेला ही उसका कारण नहीं है, क्योंकि दर्शन विशुद्धि वाले कितने ही जीव होते। क्षायिक सम्यक दृष्टि तो बिल्कुल पूर्ण विशुद्धि है उसकी, सम्यक तो संबंधी। हाँ देखो कुंतुनाथ, ये कुंतुनाथ कल ही हमने वो 5 दिन पहले, अच्छा यह श्रावण कृष्णा दशमी लिखा है, ठीक है। फिर भी श्रावण कृष्णा दशमी के दिन तज सर्वार्थ सिद्धि आए, कल उनका हमने वो तपो कल्याणक और जन्म कल्याणक देखा था। इन्हें कुंतुनाथ यहाँ चक्रवर्ती भी थे ना, शांति कुंतु अरनाथ चक्रवर्ती भी थे, तीर्थंकर भी थे, कामदेव भी थे, तो वहाँ तो सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए थे। ऐसे अन्य भी बहुत सारे तीर्थंकर हैं कि वहाँ से आए हुए हैं। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को उनका जन्म और तप कल्याण हुआ था और मोक्ष भी, हाँ सर्वार्थ सिद्धि से आए थे वो। हाँ बहुत सारे तीर्थंकर सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए बहुत है, ये इनका याद है क्योंकि अभी प्रतिपदा को ही हमने इसका, अच्छा ऋषभ देव। कर्म भूमि के प्रथम जिनेश्वर तज सर्वार्थ सिद्धि आए, और भी है देखो अंतिम लाइन फिर पढ़ती है, केवल यानी मात्र सिर्फ दर्शन विशुद्धता भी उसका कारण नहीं है, क्योंकि दर्शन मोह का क्षय कर चुकने वाले भी किन्हीं जीवों के उसका बंधन नहीं पाया जाता, यानी सभी क्षायिक सम्यक दृष्टियों को उसका बंधन ऐसी बात नहीं है, अतएव इसके बंध का कारण कहना ही चाहिए। इसके बंध का कारण क्यों कहना है, इसलिए इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बताई उन्होंने। अथवा वो प्रिंट नहीं आया, वो कवा करना, असंयत प्रमत्त और सहयोगी संज्ञाओं के समान यह सूत्र सब कर्मों की प्रत्यय प्ररूपणा में अंत दीपक है, इसीलिए यह सूत्र आया है। क्या कहते हैं, अंत दीपक का अर्थ समझते हैं, जो अंत में कहा जाता है और वो सभी सब जगह एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। जैसे हम नमोकार मंत्र कहते हैं, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम, और अंत में नमो लोए सौव साहूणम। पहले तो केवल नमो नमो लगाया और लोए सौव यह शब्द जो है वे अंत में लगाए, तो ऐसा उसका अर्थ है नमो लोए सौव अरियंताणम, लोक के सभी अरंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो अंत में लगाया तो वो सब जगह एप्लीकेबल है, इसको कहते हैं अंत दीपक। जैसे किसी बहुत बड़ा ऐसा हॉल है और उसमें कोई स्टार्टिंग में कोई दीपक है, यानी अभी हम ट्यूबलाइट कहेंगे, कोई दीपक है मध्य में है और अंत में है, कोई भी क्यों न लगे पूरा हॉल प्रकाशित हो जाता है। स्टार्टिंग वाला हम बटन दबाए तो वहाँ का लाइट है तो उसका प्रकाश भी सब जगह। तो कोई शब्द ऐसे होते कि तो शुरू में कहे जाते हैं, जैसे हम कहेंगे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट लेना है तो सर्वश्री श्री लगा देंगे एक बार और आगे के सारे श्री हुए, तो उसको कहेंगे आदि दीपक। मध्य दीपक बीच में कोई बात कहे तो वो पहले वाले और बाद वाले सबके लिए एप्लीकेबल है, तो उसको कहेंगे मध्य दीपक। और अंत दीपक यानी अंतिम बता दिए, जैसे अभी हमने लोए सौ देखा वो अंत दीपक। तो यहाँ अंत दीपक कौन कौन से शब्द है, असंयत, तो असंयत ये कितने गुणस्थान वाले असंयत है, चौथे, तो चौथे वाले का नाम ही असंयत कह दिया, यानी चौथे तक के सभी असंयत है। प्रमत्त ये छठवें गुणस्थान का नाम प्रमत्त गुणस्थान है, तो वो अंत दीपक होने से पहले से छठे तक के सभी जीव प्रमत्त है, इसका अर्थ है अंत दीपक। सहयोगी तो तेरहवें गुणस्थान वाले का नाम ही सहयोगी है, वहाँ तक के यानी पहले से लेकर तेरहवें तक सभी जीव सहयोगी योग सहित है। ये वाक्य फिर पढ़ती हूँ, अथवा असंयत प्रमत्त और सहयोगी संज्ञाओं के समान, गुणस्थानों के समान नहीं लिखा, संज्ञा है ना, उसका नाम लिख दिया, तो वो नाम क्या बताता है कि वो अंत्य दीपक है, यह बताता है। तो यह सूत्र अभी जो हमने सूत्र पढ़ा, देखो सूत्र में क्या लिखा था 39 नंबर के, किन कारणों से यह इसको तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है, यानी उसके प्रत्यय पूछे ना। अभी तक तो देशामर्शक सूत्र थे, तो उसमें से तो ये बंध का स्वामी बंध के अध्वान उतनी बात की थी, तो यहाँ कहते यहाँ सूत्र में पूछा है इसका अर्थ ये अंत दीपक है, तो अगले पहले वाले सब में भी उनके प्रत्ययों की प्ररूपणा करनी चाहिए। तो ये सूत्र क्या है, सब कर्मों की प्रत्यय प्ररूपणा में अंत दीपक है। किस में अंत दीपक है, प्रत्ययों की प्ररूपणा करने के लिए। तीर्थंकर नाम कर्म के प्रत्ययों की यहाँ सूत्र में लिख दिया है, उसका अर्थ उसके पहले वाले सब सूत्रों में प्रत्ययों की प्ररूपणा है ही, जो हमें आचार्यों ने उसमें से निकाल कर बताई है, इसीलिए यह सूत्र आया है। कितने कारणों से पूछा ना, कितने कारणों से ये तीर्थंकर प्रकृति बनती है, क्या एक से, क्या दो से, क्या तीन से, इस प्रकार यहाँ पृच्छा करनी चाहिए। कितने पूछा ना, संख्या में जवाब है। इस प्रकार के संशय में स्थित जीवों के निश्चयोत्पादनार्थ, निश्चय उत्पादनार्थ, यानी उनमें वो निश्चय संशय का निवारण करने के लिए या निश्चय उत्पन्न करना कराने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। उत्तर यानी अगला वाला सूत्र कहते हैं। अभी 40 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। तथ इमे ही सोल से ही कारणे ही जीवा तिथयर नाम गोदकम्मम बंधंती। इमे ही यानी इन 16 कारणों से, नीचे उसका अर्थ हुआ, वहां इन 16 कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म को बांधते हैं। इसलिए वो तो प्रवचनों में तीर्थंकर गोत्र, तीर्थंकर गोत्र आता है, परंतु वो है नाम कर्म की प्रकृति, उसको गोत्र भी कह देते हैं। अब ये कारणों के 16 कारणों से होते हैं ये बात बता दी। मनुष्य गति में ही तीर्थंकर कर्म के बंध का प्रारंभ होता है, अन्यत्र नहीं। देखो दोनों ओर से बहुत पक्का करते हैं। इस बात के ज्ञापनार्थ सूत्र में वहां ऐसा कहा है, तथ्य लिखा ना, यानी वहां, वहां यानी कहा, तो मनुष्य गति में ही प्रारंभ होता है। शंका, मनुष्य गति के सिवाय अन्य गतियों में उसके बंध का प्रारंभ क्यों नहीं होता? शंकाकार तो थोड़े छोड़ने वाला है। ये आजकल के बच्चे हैं, कुछ बताओ तो पहले क्यों, वहाँ है, तो अमेरिका में तो वहाँ है, पहले उसके वहाँ का जवाब दो, वो सुनेंगे नहीं कुछ करने को बोला तो, पहले पूछेंगे क्यों। तो ऐसा ही शंकाकार पूछना है, अन्यत्र क्यों नहीं होता है। इस शंका के उत्तर में कहते हैं, अन्य गतियों में उसके बंध का प्रारंभ नहीं होता, कारण कि तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के प्रारंभ का, प्रारंभ की बात है, बंध का सहकारी कारण नहीं, उसका प्रारंभ करने का जो सहकारी कारण केवल ज्ञान से उपलक्षित जीव द्रव्य है। क्या बात है, ये तीर्थंकर केवल ऐसा नाम नहीं लिखा, क्या लिखा, केवल ज्ञान से उपलक्षित जीव द्रव्य, यानी जिस जीव द्रव्य में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है ना, वो उससे उपलक्षित है ना, उससे जिसमें वो है लक्षण, यानी केवल ज्ञान से युक्त ऐसा जीव द्रव्य। अभी सिद्ध भगवान तो नहीं आएंगे यहाँ उसके उपलक्षित। तो यहाँ सहकारी कारण कौन है, केवल ज्ञान से उपलक्षित जीव द्रव्य। अतएव नहीं, अभी केवल ज्ञान लिया, यानी सामान्य केवली या तीर्थंकर। अब देखते हैं आगे और कुछ लिखा होगा तो। अतएव मनुष्य गति के बिना उसके बंध प्रारंभ की उत्पत्ति का विरोध है। फिर भी ऐसा कोई शंकाकार होगा, यहाँ पूछा कि नहीं पता नहीं, ये तो देव भी आते हैं ना समोशरण में, समोशरण में तो तीनों गति के जीव होते, मनुष्य भी होते, तिर्यंश भी होते और देव भी होते, तो उनको क्यों नहीं प्रारंभ होता? अभी यहाँ ऐसा पूछा नहीं है उन्होंने। मनुष्य गति के बिना उसके बंध प्रारंभ की उत्पत्ति का विरोध है, अथवा उनमें तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के कारणों को कहते हैं, यह अभिप्राय है। 16 इस प्रकार कारणों की संख्या का निर्देश किया गया है। पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने पर एक भी कारण होता है, दो भी होते हैं। यहाँ कौन कौन से होते हैं उसकी बात की, तो वहाँ सामान्य से सभी को बताएंगे, परंतु किसी जीव को उस 16 में से एक कारण भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, एक एक जीव की अलग अलग बात करेंगे तो। पर यहाँ सामान्य से कितने कारणों से ये बंध पाया जाता है, वो सभी 16 कारण बताएंगे। इसलिए यहाँ 16 ही कारण होते हैं, ऐसा अवधारण नहीं करना चाहिए, ही नहीं लगाना उसके, 16 कारण होते हैं उसको तो बताएंगे, परंतु इसमें से हाँ कोई भी हो सकते हैं, एक दो ये, हाँ। इसके निर्णयार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। यानी कोई दर्शन विशुद्धि के बिना भी बांधेगा ना, तो सम्यक दर्शन के बिना तो बांधेगा ही नहीं, उसमें भी विशिष्ट शुद्धि निर्मलता, शुद्धि यानी निर्मलता, उसकी लिस्ट पढ़ेंगे अभी हम। दंशन विशुद्धदाय विनय संपन्न दाय शील शीलवदेशु यानी शीलव्रत, निरतिचार दाय यानी शील व्रत में निरतिचार, अतिचार रहित शील व्रत में रहना, आवास येसु अपरिहीन दाय खणलव परिभुजण दाय लद्धि संवेग संपन्न दाय जधा थामे तधा तवे साहूणम पासु अपरिचागदाय साहूणम समाहि संधारण दाय साहूणम वेज्जावच्च जोग जुत्तदाय अरहंत भत्ति बहुसुद भत्तिये पवयन भत्तिये पवयन वच्छल दाय पयवन पवयन चाहिए पयवन एक मिनट ना प्रवचन वच्छलता प्रभावता पवयन चाहिए, प्रवचन क्या आए थे ना मिला कहाँ पवयन करना उसको, हाँ आगे पीछे हुआ पवयन पभावन दाय। देखो प्रवचन संबंधी तीन बातें, प्रवचन भक्ति, प्रवचन वत्सलता और प्रवचन प्रभावना। हाँ पवयन ने प्रवचन, वैसे पवयन चाहिए यहाँ, नहीं नहीं एक में ही, पहले दोनों में पवयन पवयन है, वैसा ही है पवयन करना। पवयन पभावनादाय अभिक्षणम अभिक्षणम यानी अभिक्षण अभिक्षण दो बार ली, अभिक्षण अभिक्षण ज्ञान उपयोग, अभिक्षणम अभिक्षणम नानो व जोग जुत्तदाय इच्छे दे ही सोल से ही कारणे ही जीवा तिथयर नाम गोदम कम्मम बंदंती। अब हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। दर्शन विशुद्धता, विनय संपन्नता, शील व्रतों में निरतिचारता, छह आवश्यकों में अपरिहीनता यानी उसमें परिहीन नहीं करना उसको, यानी हाँ वो छह आवश्यक पालना, क्षणलव प्रतिबोधनता, लब्धि संवेग संपन्नता, यथाशक्ति तप, साधुओं को प्रासुप परित्यागता, साधुओं की समाधि संधारणता, साधुओं की वैयावृत्य योग युक्तता, अरहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन वत्सलता, प्रवचन प्रभावनता और अभिक्षण अभिक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता, इन 16 कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म को बांधते हैं। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, अभी इसी का अर्थ बताएंगे विस्तार से, वह इस प्रकार है। दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन है, नहीं तो उसमें हम भूल कर देते हैं। उसकी विशुद्धता का नाम दर्शन विशुद्धता है, यानी सम्यक्त्व संबंधी अधिक निर्मलता। उस दर्शन विशुद्धता से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र को गोत्र कर्म को बांधते हैं। तीन मूर्ताओं से रहित, ये नाम मालूम है तीन मूर्ता कौन कौन सी? हाँ लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, और आठ मलों से व्यतिरिक्त, मल मद नहीं, आठ मल कौन से जो गुण है उसके उल्टा मल लेना, निशंकित आदि जो अंग है, तो शंका कांक्षा विचिकित्सा उसको मल या दोष कहेंगे। आठ मलों से व्यतिरिक्त जो सम्यक दर्शन भाव होता है उसे दर्शन विशुद्धता कहते हैं। अब शंका वो आता ना, सम्यक दर्शन कितना गए तो ये तीन मूर्ता रहित, छह अनायतन रहित वगैरह वगैरह, आठ अंग युक्त, आठ मद रहित, ऐसी बातें आती है उसमें। तो गुणों के उल्टा लेना तो दोष। आठ दोषों से रहित, जैसे सम्यक तो कैसा है, तो आठ गुणों से सहित है, जो गुण के अगेंस्ट उसको दोष लेना या मल लेना। शंका, केवल उस एक दर्शन विशुद्धता से ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कैसे संभव है? क्योंकि ऐसा होने पर सब सम्यक दृष्टियों के तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का प्रसंग आवेगा। उसका समाधान इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि शुद्ध नय के अभिप्राय से तीन मूर्ताओं और आठ मलों से भिन्न जीवों के द्वारा ही दर्शन विशुद्धता नहीं होती, किंतु पूर्वोक्त गुणों से अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर स्थित सम्यक दर्शन की साधुओं को प्रासुक परित्याग, साधुओं की समाधि संधारणा, साधुओं की वैयावृत्ति का संयोग, अरहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, प्रवचन वत्सलता, अपने वचन द्वारा प्रवचन की प्रभावना करना और अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता में प्रवर्तने का नाम विशुद्धता है। उस एक ही दर्शन विशुद्धता से जीव तीर्थंकर कर्म को बांधते हैं। यह अकेले सम्यक दर्शन का नाम दर्शन विशुद्धि नहीं है, तो उसके साथ साथ ये भी बातें होती हैं। अथवा विनय संपन्नता से ही तीर्थंकर नाम कर्म को बांधते हैं ही लगाया, वह इस प्रकार से है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय और चारित्र विनय के भेद से विनय तीन प्रकार का है। यानी कोई कोई समय दृष्टि नहीं है और विनय कर रहा है सबकी, वो विनय नहीं है। यानी अकेले सबको सबके सामने झुकना वो विनय नहीं है, वो तो देव का निर्णय किए बिना सब देवों के आगे झुकना, उसको क्या कहेंगे हम? विनय मिथ्या। तो कहते ज्ञान विनय, दर्शन विनय और चारित्र विनय के भेद से विनय तीन प्रकार का है। उनमें बारंबार ज्ञानोपयोग से युक्त रहने के साथ बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति का नाम ज्ञान विनय है। अकेले वो शास्त्र का वो आदर करना वो ज्ञान विनय नहीं है। क्या कहते हैं? बारंबार ज्ञानोपयोग से युक्त रहने के साथ, ये तो ज्ञानोपयोग की हम बात ही नहीं करते। विनय ने बाह्य आचार विचार की तरफ हमारा ध्यान है, वो भी होता है, परंतु यहाँ मुख्यतः किसके? ज्ञानोपयोग में रहना, दुनिया को जानते रहना, ऐसा नहीं कहा, ज्ञानोपयोग में रहना। और बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति का नाम ज्ञान विनय है। उसके साथ साथ यानी अपने निज शुद्धात्मा का ज्ञान करना, उसमें उपयोग में स्थिरता करना, उसके साथ साथ प्रवचन भक्ति और बहुश्रुत भक्ति। आत्मानुभव तो है ही है, स्थिरता है, ज्ञान उपयोग लिया ना, और उसके साथ ये बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति, क्योंकि अपनी तीव्र रुचि है। तो ऐसे जो आचार्य है, तीर्थंकर है, उनके में उनके बारे में भक्ति होगी। अभी हमने देखा था बहुश्रुत में तो उपाध्याय और प्रवचन को भी लिया था। आगमोपदिष्ट है, आगम में उपदिष्ट है, आगम में जिसका कथन किया है, उपदेश किया है, ऐसे सर्व प्रधान पदार्थों के श्रद्धान के साथ तीन मूर्ताओं से रहित होना। क्योंकि हम आगम में से कुछ बातों का तो विश्वास कर लेते हैं और बाकी मन में संशय होता है, निर्णय नहीं होता कि ये सच है या नहीं है। तो हमने आगम ही सच है क्या नहीं है, इस पर वो संदेह है, ख्याल है ना। तो आगमोपदिष्ट सर्व पदार्थों के श्रद्धान के साथ, अरे जीव और पुद्गल तो हम देखते हैं, धर्म अधर्म हो गए कि नहीं हो गए, काल द्रव्य भी कोई है कि नहीं है, वो कैसे होता होगा, हाउ इज इट पॉसिबल। यानी हम कैसे है अपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जरा समझा, ऐसा नहीं होता है प्रश्न, तो क्वेश्चन मार्क उस पर ही लगा देते हैं, वो है ही नहीं उस तरफ ज्यादा अपना फोर्स, अपने जो बल कहाँ रहता है, ये हो ही नहीं सकता, कहते ना। तो आगमोपदिष्ट सर्व पदार्थों के श्रद्धान के साथ, आगम में बताए हैं उसमें से थोड़े ही की श्रद्धा करना, बाकी को छोड़ देना, ऐसे थोड़े ही है। अपने को जो है ऐसा लगता है उसको तो स्वीकार रखेंगे, और बाकी जैसे स्वर्ग और नरक है कि नहीं है, नहीं नहीं है तो लोगों को डराने के लिए बताए बनाए, तो उसको पदार्थों का श्रद्धा नहीं है। तो उसके साथ तीन मूर्ताओं से रहित होना, ये तो तीन मूर्ताओं के बारे में कहे वो बहुत है, क्योंकि वो तो अपना यहाँ विषय नहीं है। जैसे रत्नग्रहण शौकाचार्य में बहुत विस्तार से हमने देखा था, लोक मूर्ता में तो क्या क्या आता है ये सब चलता रहता है। मिथ्यात्व के अलग अलग नए नए फैशन चलते रहते हैं, नित्य नए, और अन्य लोग करते तो देखा देखी सब लोग करते हैं। अब ये इतने कुंभ मेला आने दो, ये लाखों लोग उसमें वो नदियों में पड़ा पड़ी करेंगे, ये क्या है, लोक मूर्ता है ये सारी। लक्ष्मी को पूजना है, तिरियंचों को पूजना है, एकेंद्रीय वृक्षादि को पूजना, ये क्या है, वो एकेंद्रीय जीव, ऐसे ज्ञान की हीनता, और ये संगी पंचेंद्रीय होकर उसकी पूजा कर रहा है। तिरियंचों को पूजता है, नाग को पूजना, गाय को पूजना, ये सारे जो है वो सारे लोक मूर्ता में चले जाते। देव मूर्ता तो मालूम ही हमें, अन्य अन्य प्रकार के देवों की कल्पना, वैसे कोई देव है ही नहीं, उनकी कल्पना करके उनकी पूजा विजा करता रहता है, और मानता है भगवान हमारा भला कर देगा। तो तीन मूर्ताओं से रहित होना, आठ मलों को छोड़ना, ये छोड़ना तो बात है, नहीं नहीं मुझे इसको छोड़ना उसको छोड़ना ये बात नहीं है। जैसे शंका नाम का दोष है, मुझे शंका छोड़नी चाहिए, अभी मुझे प्रश्न ही पूछना नहीं तो मुझे दोष लगेगा, ये बात नहीं। वहाँ निशंक हो जाना ही शंका को छोड़ना है बिल्कुल। जब हम शास्त्र में आगम में जो बातें वो ऐसी ही ऐसी अपनी से ही वो दृढ़ श्रद्धा हो जाती है, उसको कहेंगे निशंकित होना, उसको कहेंगे शंका छोड़ना। यानी सात तत्व ऐसे ही है, छह द्रव्य ऐसे ही है, वो तो बस उत्पाद वे द्रव युक्त ही है, उसके लिए किसी निमित्त के कारण उसका कार्य नहीं होता है, वो अपने से ही परिणमते हैं, अपने से ही बने बनाए हैं, उसका कभी नाश नहीं। ये जो दृढ़ता है, ये निशंकता है, ये देव आकर कोई मेरा भला नहीं करने वाला है, ये निशंक होना, उसको कहते मलों को छोड़ना। आठ मलों को छोड़ना, अरहंत भक्ति, सिद्ध भक्ति, क्षण लव प्रतिबुद्धता, लब्धि संवेग संपन्नता को, दर्शन विशुद्धि, दर्शन विनय कहते, दर्शन विनय की बात है। हाँ, पहले ज्ञान विनय देखा ना, अभी दर्शन विनय की बात कर रहे हैं। लव क्षण लव प्रतिबुद्ध, क्षण और लव मेरे ख्याल से ये टाइम के समय का माप है। हाँ, पूजा में होगा, हाँ षोडश कारण पूजा में, ये नाम हमने लव प्रतिबद्धता, उसके लिए दूसरा कोई अर्थ, संवेग तो शब्द आया है, लब्धि संवेग संपन्नता ने संवेग की लब्धि होना, संवेग यानी संसार के प्रति उदासीनता। हाँ, और धर्म में प्रतिबुद्ध होना है, उसके संबंध में ज्ञान। हाँ, उसमें कोई अलग शब्द होगा तो दर्श विशुद्धि भावना भाई, उसमें कुछ दूसरा शब्द कोई होगा अपने पूजा की पुस्तक में षोडश कारण में, दर्श विशुद्धि विनय ज्ञानाभ्यास करे मन में ताकि महत्व नहीं, जो संवेग भाव विस्तार है वो सबको एक में संवेग में लिया होगा शायद। यानी वो दर्शन विनय कहते उसको, दर्शन विनय में क्या लेना, सम्यक दर्शन के साथ साथ इनका होना। ज्ञान विनय में लेना था ज्ञान उपयोग के साथ साथ ये प्रवचन भक्ति वगैरह जो कुछ होना, और यहाँ भी दर्शन विनय ने सम्यक दर्शन की जो निर्मलता है उसके साथ साथ ये विशिष्ट जो राग है अरहंत भक्ति है सिद्ध भक्ति आदि। देखो यहाँ शील विनय के बाद शील लिया थे तो विनय में ही है उसके। अच्छा विनय को ये अब और समझा रहे हैं हाँ, मगर इसमें भी उन्होंने 16 में भी इसका नाम लिया था लव प्रतिबुद्धता छ आवश्यक और ज्ञानाभ्यास करें मन माय। अभी आएगी हम देख लेंगे कल देखेंगे इसको क्षण लव प्रतिबोधनता। आगे हाँ देखो पढ़ेंगे वहाँ। आगे होगी इसकी बात। ये दर्शन विनय देखा हमने। शील व्रतों में निरतिचारता निरअतिचार अतिचार रहित बना। अतिचार लगना यानी कुछ दोष लगना, ऐसा दोष कि उससे नीचे के गुणस्थानों में हम देखते ना अभी कोई सम्यक्तों के अतिचार या पांचवे गुणस्थान के अतिचार या 28 मूल गुणों के अतिचार। मूल गुण तो पूरे नष्ट नहीं होते फिर भी उसमें वो दोष कहलाते हैं, उसको अतिचार कहते हैं। यहाँ क्या बात है, शील व्रत जो है उसमें अतिचार न लगना यानी दृढ़ता से उसका पालन होना। तो शील व्रतों में निरतिचारता, ये एक शब्द है कॉमा लगाना। आवश्यकों में अपरिहीनता, जो षट आवश्यक लिखे है उसमें कुछ कमी नहीं होना, अपरिहीनता अर्थात परिपूर्णता यानी षड आवश्यकों की परिपूर्णता। और शक्ति अनुसार तप का नाम चारित्र विनय है, यानी विनय में वो सारे आगे वाले भी गर्वित हैं। विनय कह दिया मगर जो यहाँ 16 भावनाएं उसमें से कितने उसमें आ गई, विनय में भी आ गई। साधुओं के लिए प्रासुक आहार आदि का दान, प्रासुक परित्याग शब्द आया था, प्रासुक आहार आदि का दान, उनकी समाधि का धारण करना यानी वो जो समाधि या जिन्होंने संलेखना ली है उनकी सेवा करना, उनकी अनुकूलता देखना, इसको समाधि का धारण करना, उनकी वैयावृत्ति में उपयोग लगाना और प्रवचन वत्सलता, यह ज्ञान दर्शन एवं चारित्र तीनों की ही विनय है। उनकी विनय करना यानी उस चारित्र की विनय करना, ऐसा अर्थ लिया। साधुओं के लिए क्यों इतना, क्योंकि जो उसमें इतने दृढ़ता आगे बढ़े हुए दृढ़ता पूर्वक समय दर्शन ज्ञान चारित्र की जिनके इतनी अधिकता है, ऐसे जीवों को वो उस मार्ग पर चले इसलिए उनके प्रासुक आहार देना, अन्य अन्य तरह से उनकी सेवा करना, हाथ पैर दबाना ये बात नहीं होती खाली। तो उसके पीछे का रहस्य क्या है कि हमें समय दर्शन ज्ञान चारित्र की महानता भासित होती है तो ऐसा जिन्होंने धारण किया है उन जीवों के प्रति भी उनके सहज ऐसे भाव आते हैं कि वो अपने मार्ग में ही स्थिर रहे। क्योंकि रत्नत्रय समूह को साधु व प्रवचन संज्ञा प्राप्त है। क्या रत्नत्रय को ही साधु और प्रवचन लिखा उन्होंने, प्रवचन भक्ति कहा ना, इसी कारण चूंकि विनय संपन्नता एक भी होकर 16 अवयवों से सहित है, यानी विनय संपन्नता एक में सभी 16 आ गए, इसलिए उन्होंने पहले कहा था विनय संपन्नता से ही तीर्थंकर प्रकृति बनती है तो उसमें ये सब गर्भित है। अतः उस एक ही विनय संपन्नता से मनुष्य तीर्थंकर नाम कर्मों को बांधते हैं। शंका ईश्वर के ऊपर बिंदी लगाना, यह विनय संपन्नता देव और नारकियों के कैसे संभव है? समाधान, उक्त शंका ठीक नहीं है क्योंकि देव नारकियों में भी ज्ञान विनय और दर्शन विनय की संभावना देखी जाती है। शंका, तीनों विनयों के समूह से सिद्ध होने वाला कार्य दो से ही कैसे सिद्ध हो सकता है? तो उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मिट्टी, जल और सूरण कंद से उत्पन्न होने वाला सूरण कंद का अंकुर, वो अंकुर बराबर करना, अकुर हुआ है, अ के ऊपर बिंदी, कु के ऊपर है ना, उसके कंद और दुर्दिन अर्थात वर्षा से ही उत्पन्न होता हुआ पाया जाता है, अथवा ये पहले पढ़ लेते फिर उसका अर्थ करेंगे, अथवा दो घोड़ों से खींचा जाने वाला रथ बलवान एक ही देव विद्याधर या मनुष्यों से खींचा गया पाया जाता है। प्रश्न क्या पूछा था? तीनों ही विनयों से जो कार्य सिद्ध होता है, कौन से कार्य की बात चल रही है? तीर्थंकर प्रकृति के बंध की। तो देव और नारकियों में ये चारित्र विनय तो संभव नहीं है, क्योंकि उनकी इतनी स्थिरता स्वयं की भी नहीं है, और ना ही वहाँ साधुओं को आहार आदि देना आदि उनकी वैयावृत्ति करना वगैरह बनती है बात। तो ये दोनों से ही काम क्यों करते, क्यों हो जाता है? तो वहाँ ये पहला दृष्टांत दिया सूरण कंद, हम तो खाते नहीं सूरण, जो जमी कंद होता है ना, एक सूरण जिसका नाम है, तो वो कंद में फिर अंकुर उत्पन्न होता है, तो काहे से उत्पन्न होता है? तो कहते मिट्टी से, जल से और सूरण कंद जो है वहाँ पर पड़ा है उसमें से नया अंकुर उत्पन्न होता है। ऐसा सूरण कंद का अंकुर, तो कभी कभी वर्षा के दिन में क्या होता है, सूरण कंद है और दुर्दिन यानी वो वर्षा है, हाँ पानी यानी वर्षा यानी बरसात के दिन है, तो उसमें से वो उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है, यानी दो से हुआ ना वहाँ कार्य। अथवा जो रथ दो घोड़ों से खींचा जाता है वो बलवान ऐसे किसी एक देव ही उसको खींच सकता है, एक विद्याधर ही उसको खींच ले जाए, या मनुष्य भी बलवान हो तो वो एक ही मनुष्य वो दो घोड़ों का काम करे, वैसे यहाँ भी हो सकता है, ये बात बता रहे। फिर शंका, यदि दो ही विनयों से तीर्थंकर नाम कर्म बांधा जा सकता है तो फिर चारित्र विनय को उसका कारण क्यों कहा जाता है? तो उसका कारण ही क्यों कहना, केवल दो ही विनय कह दो, ऐसी शंकाकार की शंका है। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ज्ञान दर्शन विनय के कार्य का विरोधी, इसको डबल इकार लगाया है, पहली वाली ही निकाल लेना, क्या कहते हैं, ज्ञान दर्शन विनय के कार्य का विरोधी चारित्र विनय नहीं होता, यानी चारित्र विनय कोई उसका विरोधी नहीं है, उसके साथ साथ ही पाया जाता है। इस बात को सूचित करने के लिए चारित्र विनय को भी कारण मान लिया गया है। अब ये विनय की बात है। अथवा शील व्रतों में निरतिचारता से ही लगाया तीर्थंकर नाम कर्म बांधा जाता है, वह इस प्रकार से, उसमें भी कौन कौन सी बातें आती है गर्भित है उसको भी बताएंगे। हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और परिग्रह से विरत होने का नाम व्रत है। व्रत का अर्थ है विरत, किससे विरत होना, ये पांच पापों से विरत होना, उसका नाम है व्रत। व्रतों की रक्षा को शील कहते हैं। सुरापान, मांस भक्षण, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद एवं नपुसक वेद, इनके त्याग न करने का नाम अतिचार और इनके विनाश का नाम निरतिचार या संपूर्णता है। इसके भाव को भाव लो हुआ है, निरतिचारता कहते हैं। फिर से देखो क्या क्या कहा, सुरापाने ने मध्य प्राशन, अब सुरापान में सभी कुछ नशीला जो कुछ है उसे समझ लेना, मांस भक्षण और ये सारे अभी कषाय नौ कषायों को लिया, क्रोध मान माया लोभ और नौ कषाय, इनके त्याग न करने का नाम अतिचार है और इनके विनाश का नाम निरतिचार है। ये संपूर्ण विनाश यानी थोड़ा बहुत चले ऐसा नहीं है। शील व्रतों में इस निरतिचारता से तीर्थंकर कर्म का बंध होता है। फिर शंका, इसमें शेष 15 भावनाओं की संभावना कैसे हो सकती है? पहले जो विनय में सब कुछ लगा कर दिखाया था तो यहां भी पूछते हैं, यह ठीक नहीं है क्योंकि क्षण लव प्रतिबुद्धता, लब्धि संवेग संपन्नता, साधु समाधि धारण, ये वैयावृत्य करना, वैया हुए ना, वैयावृत्य योग युक्तता यानी वैयावृत्य करना साधु, प्रासुक परित्याग यानी प्रासुक आहार का दान, हमने पहले पढ़ा था ना, यहाँ कॉमा लगाना, अरहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति और प्रवचन प्रभावना लक्षण शुद्धि से युक्त। शुद्धि किसको कहा? इन बातों को, इन लक्षण, इनके शुद्धि से युक्त सम्यक दर्शन के बिना शील व्रतों की निरतिचारता बन नहीं सकती। यानी ये सारे जो उसमें हमने अन्य जो बातें देखी थी उनके बिना, केवल उनके बिना नहीं, उनसे युक्त सम्यक दर्शन के बिना ये शील व्रतेषु निरतिचारता नहीं बन सकती। दूसरी बात यह है कि जो असंख्यात गुणित श्रेणी से कर्म निर्जरा का कारण है वही व्रत है। तो मिथ्या दृष्टि के व्रत होते कि नहीं होते? ये आ गए ना, लिखा है क्या? हाँ। और सम्यक दर्शन के बिना हिंसा असत्य चौर्य अब्रह्म और परिग्रह से विरत होने मात्र से वह गुणश्रेणी निर्जरा हो नहीं सकती। यानी मिथ्यात्व अवस्था में पापों का त्याग करने मात्र से असंख्यात गुना निर्जरा नहीं हो सकते। कल इसमें भी बात आई थी ना प्रवचन सार में, उसमें लिखा था लक्ष करोड़ लाख करोड़ भवों में अज्ञानी जीव तप करके जो कर्म को खिपाता है उतना कर्म ज्ञानी जीव क्षण मात्र में, उच्छ्वास मात्र में लिखा हुआ यानी लीलया सहज मात्र से नष्ट करता है, क्षण मात्र में कहा, तो उसकी असंख्यात गुणा निर्जरा होती है, तो उसको व्रत कहते हैं। और हम तो व्रत यानी बाह्य व्रत अंगीकार करने को ही व्रत कहते हैं, उस व्रत की बात नहीं है। मात्र पाप का त्याग किया तो मिथ्या तो वैसा ही है, तो पाप के बन ले पुण्य बन देगा, परंतु उसके साथ मिथ्यात्व का वो तो बड़ा तो चल ही रहा है ना। कल स्वामी जी के प्रवचन में उसके लिए उदाहरण दिया था कि बहुत बड़ा कर्जा है तो 2 रुपये कर्जा उतारने के लिए देता है और 100 रुपये और निकालता है उसमें से नया कर्जा लेता है। देखो ये करना नियोगों के ग्रंथों में भी कितनी स्पष्टता से लिखा है, पहले भी आया था ना कि केवल बाह्य में कुछ विशिष्ट क्रिया पालना उसको तो यम कहा है, संयम नहीं कहा। संयम तो सम्यक दर्शन पूर्वक जो व्रतादि होते हैं यानी जो ऐसी क्रियाएं वगैरह पालते हैं तो उसके उसको संयम कहते हैं, नहीं तो उसको द्रव्य यम कहा उन्होंने। और यहाँ भी बात कितनी स्पष्ट लिखी, 2 बातें लिखी है। पहले तो इतने लक्षण से युक्त ऐसा जो सम्यक दर्शन है उसके बिना व्रतों की निरतिचार पना नहीं बल, यानी उनके ही व्रत होते हैं जो सम्यक दृष्टि है उनके ही व्रत होते हैं। और दूसरी बात, असंख्यात गुणित श्रेणी यानी असंख्यात गुणी निर्जरा कर्म निर्जरा का कारण है वही व्रत है। और वो जो असंख्यात गुणी निर्जरा है वो सम्यक दर्शन के बिना यानी मिथ्या दृष्टि जो हिंसा असत्य चौर्य अब्रह्म और परिग्रह के विरत होने मात्र से ऐसी गुणश्रेणी निर्जरा नहीं हो सकती। मिथ्या दृष्टि जीव को ऐसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों से ही उत्पन्न होने वाले कार्य की उनमें से एक के द्वारा उत्पत्ति का विरोध है। क्या कहा था? सम्यक दर्शन सहित पापों से विरति का नाम व्रत कहा था, और उससे असंख्यात गुणी निर्जरा होती कहा था। अब उसमें से सम्यक तो है ही नहीं, बस एक को ही पकड़ लिया पापों के त्याग को, तो उसमें से वो असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं हो सकती। शंका, इनकी संभावना यहाँ भले ही हो पर ज्ञान विनय की संभावना नहीं हो सकती। यहाँ क्या कहते हैं, वो सब उसमें शील में निरतिचारता का अर्थ में ये दर्शन और ये व्रतों व्रत उसको बताए ना, सम्यक दर्शन सहित वाले व्रत होते उसकी बात की, तो उसमें ज्ञान कहाँ आया ऐसा पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि छह द्रव्य नौ पदार्थों के समूह और त्रिभुवन को विषय करने वाले एवं बार बार उपयोग विषय को प्राप्त होने वाले ज्ञान विनय से बिना शील व्रतों के कारणभूत सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं बन सकती। त्रिभुवन को विषय करने वाले कहा हो? तीन लोक संबंधी जो पदार्थ है या तीन लोक के जो कुछ है, ये लोक भावना में भी आता नहीं, ये तो बारह भावना में सबसे बड़ी लोक भावना है। केवल वो भौगोलिक रचना नहीं उसमें, तो उसमें तो ये तो भौगोलिक रचना तो है ही है। फिर कौन से जीव होते हैं, एकेंद्रियों से पंचेंद्रिय, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें कितने कैसे कैसे कर्मों से बनते हैं, बादर क्या है, सूक्ष्म, ये सब पूरा लोक भावना तो सबसे बड़ी भावना है। बड़ी भावना है ने कार्तिकेयनो प्रेक्षा में जो बारह भावना लिखी है उसमें सबसे ज़्यादा पेजेस तो ये तो लोक भावना में आते हैं, सबसे बड़ा चैप्टर है वो। और बारह भावना से दुख होता होगा, क्या होता है? ये ढाल में लिखा ना, छड़ाला में क्या लिखा है, ये बारह भावना कौन भाते हैं? मुनि भाते। और वो कैसे है, उसको माँ कहा है, कैसे माँ? आत्मस्थिरता होने में वो कारणभूत होती है, और वो आनंद की जननी होती है, यानी उससे अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने में कारणभूत कहा। ये भावना भाते हैं ना, वो जब आत्मस्थिरता नहीं है तो ये बारह भावनों का चिंतन चलता है, इनका ध्यान चलता है, लोक संबंधी रचना है, लोक का जो विषय है, करणानियों के विषय है, और उसका विचार करते फिर उपयोग अपने अंदर में जा, दुनिया भर में उपयोग नहीं लगाते, या तो आत्मा में लगाएंगे और या इन चीज़ों में लगा के, वो उनमें लगाने के लिए नहीं, उसके चिंतन में भी अपनी मुख्यता है वहाँ, क्योंकि ये सर्वज्ञ भगवान ने बताई हुई बातें हैं, तो वो हम अपने ज्ञान से श्रुत ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं, और फिर मुख्यतः अपने जानने की है, और ये जानते तो अपने ज्ञान स्वभाव का, अपने सर्वज्ञ स्वभाव का वहाँ बहुमान है। तो यहाँ भी क्या लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी, छह द्रव्य नौ पदार्थों के समूह और त्रिभुवन को विषय करने वाले एवं बार बार उपयोग विषय को प्राप्त होने वाले, या अपने उपयोग को प्राप्त होने वाले, अपने आप में स्थिर होने वाले ज्ञान विनय से, इसको ज्ञान विनय कहा। ज्ञान विनय ने बाह्य में वो शास्त्र को कैसे रखना, कैसे नमस्कार करना, अकेले उसकी भी बात होती है, परंतु हम उसी को विनय समझ लेते हैं। अपने ज्ञान का विनय, अपने आप में स्थिर हो जाना, अपने उपयोग में ही रह जाना, तो इसको ज्ञान विनय कहा। अब आगे बढ़ते हैं, शील व्रत विषयक निरतिचारता में चारित्र विनय का भी अभाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यथाशक्ति तप आवश्यक अपरिहीनता और प्रवचन वत्सलता लक्षण चारित्र विनय के बिना शील व्रत विषयक निरतिचारता की उपपत्ति यानी उत्पत्ति ही नहीं बनती, यानी उसमें भी ये सारे गर्भित है। शील व्रतेषु अनितिचार में चारित्र विनय भी गर्भित है, इस कारण यह तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का तीसरा कारण है। कौन कौन से कारण देखे अभी तक, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, और शील व्रतेषु निरतिचारिता। अब आवश्यकों में अपरिहीनता यानी परिपूर्णता, उससे ही लगाए फिर, क्योंकि एक एक में बाकी गर्भित है ना, इसलिए एक को ही लगा सकते हैं। अपरिहीनता से ही तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। अभी ये आवश्यक कौन से है उसकी बात करते हैं। समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग के भेद से 6 आवश्यक होते हैं। अब ये किसको कहना वो भी बताएंगे। एक एक का अर्थ क्या है, कौन से 6 कहा? समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग। शत्रु मित्र, मणि पाषाण और सुवर्ण मृत्तिका में राग द्वेष के अभाव को समता कहते हैं। समता भाव यानी साम्य भाव, समता साम्य भाव, जिसको अपने आत्मा में उपयोग स्थिरता है, अपने अतीन्द्रिय का अनुभव होता है, तो उसके तो बाह्य वस्तुओं में, संयोगों में, ये अच्छा ये बुरा ये इसकी ऐसी उसके इष्ट अनिष्टता की बुद्धि ही नहीं रहती। तो ये मित्र है और ये शत्रु है, ऐसी बुद्धि नहीं होती ना, इसलिए उसको कहते हैं शत्रु और मित्र में साम्य भाव। और हम नहीं नहीं अभी हमको किसी के प्रति ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना, सब समान है, यानी वो अंदर भले वो शत्रुता लग जावे और बाह्य में उसको दबा दबा कर खींचा तानी करे, वो बात नहीं है यहाँ। मणि और पाषाण दोनों ही पाषाण ही है, दोनों पृथ्वी का है, तो उनको तो मूल स्वरूप से देखते हैं, हाँ तो ये बहुत बढ़िया, और ये रत्न है, और ये पत्थर है, ये ऑर्डिनरी पत्थर है, ऐसे उसमें है, ये बहुत बढ़िया है, मुझे मिला तो अच्छा है, ऐसे कोई उसके प्रति आसक्ति भाव, तीव्रत भाव, अहोभाव नहीं होता, या कोई विस्मय नहीं उसके प्रति उनके। सुवर्ण मृत्तिका, सोना हो या मिट्टी, जब कहते मेरु पर्वत सुवर्ण का है तो एकदम आंखें भी सोने जैसे चमकती है, हा? तो कहाँ होगा, अरे पूरा सोने का, ऐसा कैसे होगा, तो कहाँ होता है वो मेरु पर्वत। तो मैं तो कहूंगी जहां है वहीं रहने दो, क्योंकि सोना अपने घर में लाए ना तो भी वो सुरक्षित रहने वाला नहीं है, तो वो मेरु पर्वत में ही रहना अच्छा है। तो ये क्योंकि उसके प्रति हमें लगता है सोना बहुत महंगा है, बहुत अच्छा है चीज, और मुझे चाहिए, चाहिए वाला जो है, परंतु इनके तो कोई राग द्वेष है ही नहीं है, इसलिए कहते राग द्वेष का अभाव, यानी उसकी उत्पत्ति ही नहीं होना, उसको अभाव कहते। हमें तो वो बहुत मन में तो लालच होती है, परंतु क्या करें, अभी हम स्वाध्याय में बैठे तो हम नहीं नहीं हमको तो वो सब समान है सर। ये ऊपर से लादी हुई नहीं है समानता। अभी स्तव किसको कहना, देखो स्तव भी है और वंदना भी है, दोनों में क्या फर्क है? हाँ, स्तवन करना और वंदना। हाँ, पढ़ लिया, परंतु मुख्यता क्या है, स्तव यानी वचनात्मक है और वंदना यानी शरीर के द्वारा हम जो नमस्कार करते हैं ना, वंदन करना, उसके साथ भी हम दोनों साथ में करते हैं ना, इसे वंदन करना, उसमें भी एक एक तीर्थंकर को वगैरह वो तो बात अभी बताएंगे। देखो क्या कहते हैं, पहले स्तव को समझाते हैं, स्तव को या स्तवन कहो, यही बात है ना, हम स्तवन कहते ना, स्तवन यानी स्तुति। अतीत, अनागत और वर्तमान काल विषयक पंच परमेष्ठियों के भेद को न करते करके, यानी त्रिकाल के, यानी काल संबंधी भेद न करके, अरहंतों को नमस्कार, जिनों को नमस्कार इत्यादि द्रव्यार्थिक निबंधन नमस्कार का नाम स्तव है। यहाँ उन्होंने अलग बात की, नमस्कार ही लिया है, परंतु जैसे हम नमो अरिहंतानम कहते, लोक के सभी त्रिकालवर्ती सब अरिहंतों को नमस्कार, सामान्य से सभी अरहंतों को नमस्कार किया, वो द्रव्यार्थिक नहीं, यानी वो भेद नहीं किया, ये हमारे वर्तमान के है या पहले हो चुके उनको नमस्कार कर रहा हूँ, ऐसे कहने अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, वो भी त्रिकाल वर्तती और लोक के सभी। इसका नाम उन्होंने यहाँ स्तव का, कौन सा अंतरंग? हाँ, मुनियों के शट आवश्यक है, वही तो ये है। हाँ, नियम सार में हमने देखा था ना इसको। हाँ, सामायिक समता है ना, सामायिक। ये सभी निश्चय से तो अपने में स्थिरता ही है। अभी ये जो हम अलग अलग भेद बता रहे हैं, तो ये तो बाह्य क्रिया है या व्यवहार से, वैसे भी होती है उन जीवों को, परंतु उनको व्यवहार किसको कहेंगे, शर आवश्यक किसको कहेंगे? जिसके निश्चय वो है उसको व्यवहार कहेंगे। व्यवहार होता नहीं उसकी बात नहीं है, परंतु ये सारे जो आवश्यक है, जो कुछ कार्य होने वाला है, वो अंतरंग में स्थिरता से होने वाला है। तो दिन भर क्या होंगे, तो उनके क्रियाओं में भी ये बातें होगी सब। तो पहले में पहले वो सामान्य से सबको नमस्कार करते हैं, वो तो स्तव हुआ। अब कहते हैं ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभ सुपार्श्व चंद्र प्रभ पुष्पदंत शीतल श्रेयांश वासुपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंतु अर मल्ली मुनिसुव्रत नमी नेमी पार्श्व और वर्धमानादि तीर्थंकर तथा भरतादि केवली आचार्य एवं चैत्यालयादिकों के भेद को करके, यानी 24 तीर्थंकर, अन्य सब केवली आचार्य और चैत्यालयादिकों के भेद को करके, ते सर्व ने साथे तथा प्रत्येक ने प्रत्येक ने, सर्व ने साथे ने वो द्रव्यातिक नहीं हुए स्तव, और प्रत्येक ने तो वंदना हुए। मनुष्य क्षेत्र वर्तता हरियंतन, ऐसी बात है। अथवा गुणगत भेद के आश्रित शब्द कलाप से व्याप्त, हाँ शब्द कलाप है ना, वचन शब्द कलाप से व्याप्त है ना, वो तो करेंगे उसका नाम ले लेके एक एक को, क्योंकि गुणों के, हाँ गुणों के भी भेद किए हैं, शब्दों से उनकी स्तुति वगैरह करना। वर्तमान के केवलियों के गुणानु स्मरण रूप नमस्कार करने को, यानी गुणों के स्मरण का नमस्कार करने को वंदना कहते हैं। ये उल्टा हो गया अभी। 84 लाख गुणों के समूह से संयुक्त 5 व्रतों में उत्पन्न हुए मल के धोने का नाम प्रतिक्रमण है। तो मल कैसे धोया जाता है? जो अतिक्रमण किया है उससे प्रतिक्रमण यानी पीछे हटना पड़ेगा। हमने कहा पाकिस्तान ने हमको अतिक्रमण किया, हमारा प्रदेश ले लिया, तो उसका प्रतिक्रमण क्या होगा? ये मुझे माफ करो, मैं ऐसा करना, वो तो थोड़ा ही प्रतिक्रमण होगा। वो पीछे हटेगा तो हम कहेंगे उसने प्रतिक्रमण किया। तो ऐसे हम अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाए, वही तो प्रतिक्रमण है। फिर भी बाह्य वचनों के द्वारा भी ऐसा बोलकर कथन किया जाता है, अपने दोषों का, वहाँ जो दोष उत्पन्न हुए उसका कथन करके उसके विनाश की भावना भी ऐसी शुभ भाव रूप से होती है वहाँ। परंतु प्रतिक्रमण निश्चित निश्चय से किसको कहेंगे? अपने आप में स्थिरता को ही प्रतिक्रमण कहेंगे। महाव्रतों के विनाश व मलोत्पादन के कारण जिस प्रकार न होंगे वैसा करता हूं, ये वर्तमान काल हुआ। पहले में पहले उत्पन्न हुए हैं ऐसे मल का विनाश करना, उसको प्रतिक्रमण करना। अभी जिस प्रकार न होंगे वैसा करता हूं, वर्तमान की बात है ना, ऐसी मन से आलोचना करके उसको आलोचना कहा। 84 लाख व्रतों की शुद्धि के प्रतिग्रह का नाम प्रत्याख्यान है। शुद्धि का प्रतिग्रह करना है ना उसको। हाँ देखो, हाँ 84 लाख वो तो जैसे हम प्रमाद के ऐसे भेद इतने सारे निकाले थे ना, अभी इसमें भी कौन कौन सी बातें आती है उसका सारा गुणा करेंगे आपस। हाँ परमिटेशन सब तो इतने होते हैं उसमें, वो सारे वो 10 धर्म भी आते हैं, बहुत सारे हैं। आपको उसके एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो बता देंगे। हाँ उसको आपस में गुना करेंगे तो ये 84 लाख होते हैं और ये 18,000 शील के भेद होते हैं। ये 84 लाख उत्तर गुण कहलाते हैं और 18,000 शील के, इसके बाद हम कल करेंगे फिर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो प्रेरणा।